आज है 13 नवंबर दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। ईरान इराक सीमा पर आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 350 तक पहुंची। चारों ओर तबाही का मंजर। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक बढ़ चुके प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। प्रदूषण पर राजनीति भी जारी।
दिल्ली की सरकार जितना करने की स्थिति में है उससे ज्यादा हम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक भी जिम्मेदारी है और यहाँ के लोगों के साथ हमारा कंसर्न है।
अलवर में गाय लेकर जा रहे उमर मोहम्मद की हत्या के सिलसिले में एक आदमी हिरासत में। पुलिस ने गो तस्कर शब्द पर क्या कहा।
हमारी शब्दावली के अंतर्गत बातें नहीं आती है, हमारे लिए एक अपराध है जो कि 302 का अपराध है।
चिट्ठियां भी होंगी और खेल समाचार भी होंगे, लेकिन सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। ईरान इराक के बीच पहाड़ी सीमा पर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान जारी है। इस भूकंप के कारण अब तक 350 से अधिक लोग मारे गए हैं और 4000 लोग घायल हुए हैं। इस भूकंप में ईरान का सरपोले जहब शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था और इसमें एक अस्पताल भी तबाह हो गया है। भूस्खलन के कारण बचाव अभियान में बाधा आई है और तकरीबन 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की आवश्यकता है। आसियान सम्मेलन से इतर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका के रिश्ते परस्पर हितों से आगे हैं और ये एशिया और मानवता के लिए लाभप्रद हैं। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा दोस्त बताया जो शानदार काम कर रहा है। वहीं आसियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पहली फिलीपींस यात्रा पर खुशी है।
There is a lot that India and the Philippines share in common. We are both.
फिलीपींस और भारत में बहुत सी समानताएं हैं। हमारा बहुलवादी समाज और जीवंत लोकतंत्र है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है जो कुछ नया करने में यकीन रखती है। यह थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। म्यांमार सेना ने कथित तौर पर रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के प्रमुख को बदल दिया है। जनरल मॉन्ग मॉन्ग सो को पद से हटाने का कारण नहीं बताया गया है। जनरल सो टिंग नैंग को उनकी जगह सैन्य अभियान का नया प्रमुख बनाया गया है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना ने अभियान चलाया था जिसके कारण तकरीबन 6,00,000 लोगों को पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए वह यमन के मुख्य बंदरगाह को फिर से शुरू नहीं होने देगा। एक हफ्ते पहले सऊदी में हुती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद सऊदी गठबंधन ने यमन की नाकेबंदी कर दी थी। सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसी स्थिति जारी रहती है तो अकाल की कगार पर खड़े देश में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले लेबनान के नेता साद हरीरी ने कहा है कि वह जल्द ही लेबनान लौटेंगे। अपने पद से इस्तीफा देने के 8 दिन बाद पहली बार उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा लेबनान को एक सकारात्मक झटका देने के लिए था। उन्होंने सऊदी अरब के दबाव में ऐसा करने से इनकार किया है। मैं यहाँ सऊदी अरब में आजाद हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कल यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन मेरा एक परिवार है, क्या मुझे उनकी सुरक्षा का अधिकार नहीं है। ये थे साद हरीरी के शब्द। कैटालोनिया के बर्खास्त नेता कार्लस पुज्जमोंट ने कहा है कि कैटालोनिया संकट का आजादी के अलावा भी कोई और हल हो सकता है। उन्होंने बेल्जियम में एक इंटरव्यू में कहा कि वह खुद ही निर्वासन में है और समझौते के लिए उनके आगे हमेशा रास्ते खुले थे। जर्मनी में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2017 में 4 साल के बाद पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में बढ़ोतरी की संभावना है। उनका कहना है कि 2% होने वाली बढ़ोतरी की मुख्य वजह चीन में कोयले का अधिक मात्रा में इस्तेमाल होना है। 2 साल पहले पेरिस में इस्लामी चरमपंथियों के हमले में मारे गए 130 लोगों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने श्रद्धांजलि दी है। वह बेताक्लों नाइट क्लब गए जहां पर एक रॉक कॉन्सर्ट में 89 लोग मारे गए थे। मैक्रों ने डेविड बोवी के दर्द भरा एक गीत भी सुना। इससे पहले मारे गए लोगों की याद में हवा में गुब्बारे छोड़े गए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी।
75 वर्षों से आपके साथ।
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईरान से, जहां पश्चिमी प्रांत करमनशाह में इराक की सीमा के पास जबरदस्त भूकंप आया है और इसमें अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सारपोले जहाब जिले में चारों तरफ तबाही का मंजर है, इमारतें ढह गई हैं और राहत बचाव दल उनमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक तबाही सीमा के दोनों तरफ हुई है, यानी इराक के पूर्वी जिलों में भी तबाही का यही दृश्य है। सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक सिर्फ ईरान में ही 5,500 लोग घायल हो गए हैं। ईरान का ये इलाका पहले भी भूकंप की चपेट में आ चुका है, उसके कारणों पर बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए गुरप्रीत कौर से।
भूकंप का केंद्र इराक के कुर्द बहुल शहर हलब्जा से दक्षिण पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर था। मरने वालों में ज्यादातर लोग ईरान के पश्चिमी प्रांत करमनशाह के हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई है। सबसे ज्यादा मौतें ईरान में हुई हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक मरने वाले 320 लोगों की पहचान कर ली गई है। यहां कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो से पता चलता है कि दुकानों में रखी अलमारियां भूकंप के कारण हिलने लगी और उनमें रखा सामान चारों ओर बिखर गया। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। हालांकि भूस्खलन के चलते राहत और बचाव के काम में मुश्किल आ रही है। कई कस्बों और गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 लोग बेघर हो गए हैं। बाल बाल बचे कुछ लोगों ने ईरान के सरकारी टीवी को अपनी आपबीती सुनाई।
यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन लोग डर के मारे घरों के अंदर नहीं जा रहे हैं। वो बहुत भयानक पल था। मैं किसी तरह सीढ़ियों पर पहुंचकर बस नीचे चला जाना चाहता था।
हमें लगा जैसे जमीन हिल रही है। हम उठे लेकिन तभी बिजली कट गई और हम बाहर की तरफ भागे। ये पता नहीं चल पाया कि हमारे घरों को कितना नुकसान हुआ है।
ये थे भूकंप पीड़ित लोगों के शब्द। ईरान के एक अधिकारी पीर हुसैन कुलीवन ने सरकारी टीवी चैनल में बताया कि ज्यादातर तबाही देश की सीमा से 15 किलोमीटर दूर सारपोले जहाब कस्बे में हुई। उन्होंने बताया कि भूकंप वाले इलाके में अस्पताल की इमारत को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पीड़ितों के इलाज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दुनिया भर में भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मेघेरिनी ने कहा कि यूरोपीय संघ मदद के लिए तत्पर है।
Let me mention one thing that today I think is on top of our minds and hearts. The earthquake that yesterday night struck.
हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिजनों के साथ है। हम जानते हैं कि इस तरह के भयानक भूकंप की स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल होता है। यूरोपीय संघ इन हालातों में इराक और ईरान के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद को तैयार हैं।
ये थे यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मेघेरिनी के शब्द। वहीं इराक में भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। कुर्द बहुल इलाके में करीब 321 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद राजधानी बगदाद में लोग भागकर सड़कों पर जमा हो गए। क्षेत्रीय राजधानी इरबिल में मौजूद बीबीसी संवाददाता रामी रोहाइम ने बताया कि भूकंप से जमीन एक मिनट से ज्यादा समय तक हिलती रही।
ये रिपोर्ट आपने सुनी गुरप्रीत कौर से। ईरान के जिस इलाके में भूकंप आया है, वहां पहले भी कई बार धरती हिली है। इसके क्या कारण हैं और बार बार आ रहे भूकंपों की पेचीदगी को समझने के लिए हमारी सहयोगी कमलेश मिठानी ने बात की राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के विनीत गहलोत से।
देखिए, जो ईरान और इराक में जो ये भूकंप आया, उसकी बाउंड्री पे जो भूकंप आया है, आप अगर ध्यान से देखें तो वहाँ पे जागरोस माउंटेन्स हैं। तो वो जो पर्वत श्रृंखला है वो बनी है जो अरेबियन प्लेट है और उधर हमारी यूरेशियन प्लेट है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से ये माउंटेन्स बने हैं। आप जब भी किसी माउंटेन को देखें तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा आनी चाहिए कि ये माउंटेन जो है वो प्रोडक्ट है अर्थक्वेक साइकिल का, कि वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए होंगे और बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहे हैं और आएंगे, जिसकी वजह से ये माउंटेन जो पर्वत श्रृंखला है वो बनी है
जी। इसी कारण क्या इसे मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव प्लेस कहते हैं?
ये वर्ड थोड़ा सा वो होता है कि हम लोग काफी आसानी से कहते हैं कि मोस्ट सिस्मिकली मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली जो आप प्लेट बाउंड्रीज हैं वो सारी सारी एक्टिव हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो पैसिफिक प्लेट के अराउंड जो बाउंड्री है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं ना, वो बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, तो वो बहुत सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट में जाएं, मतलब वो जो जैसे पैसिफिक प्लेट है उसमें एक ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंट प्लेट से कोलाइड करती है या सबडक्ट करती है, ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है, लेकिन यहाँ वाले केस में हमारे जो अल्पाइड हिमालयन बेल्ट जिसे कहते हैं हम लोग, वो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अपना इंडिया से लेके मणिपुर नागालैंड से वहां से इंडो बर्मीज आर्क निकलती है, उसके बाद फिर वो हिमालयन आर्क बन जाती है, फिर उसके बाद वो जाग्रोस में चली जाती है, फिर उसके बाद वो थोड़ा यूरोप में घुस जाती है। तो यहाँ पे कई जगह ऐसी है जहाँ पे कि वो टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो कोलाइड करती है, जैसे कि हमारे इंडिया में देखें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, लेकिन जाग्रोस में देखेंगे तो वो अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है जो कि आपस में कोलाइड करती हैं। तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहाँ पे, तो ये भी बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और यहाँ भी बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन ये कहना कि वो मोस्ट एक्टिव है वो थोड़ा, हम लोग मोस्ट एक्टिव उसको कहते हैं जहाँ पे कि साइस्मिक एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही हो, नंबर ऑफ अर्थक्वेक की बात नहीं है, साइस्मिक एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, यानी कि उसमें बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप भी आने चाहिए। तो यहाँ पे उतने बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन भूकंप ज्यादा आते हैं।
कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप ज्यादा माना जा सकता है?
देखिए हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि हम कहते हैं कि साहब जो छोटे भूकंप हैं वो मैग्नीट्यूड 3 से कम होते हैं, इसको माइक्रो अर्थक्वेक कहते हैं, फिर हम कहते हैं 3 to 5 वो उसको स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक कहते हैं, फिर हम कहते हैं 5 के आसपास जो होते हैं उनको मॉडरेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक कहते हैं, लेकिन अगर जो मैग्नीट्यूड है वो 7 और 8 के बीच में होता है तो उसको मेजर अर्थक्वेक कहते हैं, लेकिन अगर वो 8 के ऊपर हो जाए तो हम उसको ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ बिहार नेपाल अर्थक्वेक था 1934 का, या 1950 का आसाम अर्थक्वेक था, ये सब ग्रेट अर्थक्वेक में आते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड जो है वो 9 के ऊपर चला जाए तो हम उसको ग्रेट के अलावा जायंट अर्थक्वेक भी कहना शुरू करते हैं कि बहुत ही जायंट था वो।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के विनीत गहलोत से बात कर रही थी हमारी सहयोगी कमलेश मेठानी, और अब हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बारे में ये सूचना।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और आइए अब लौटते हैं भारत की ओर। दिल्ली में खतरनाक हद तक बढ़ चुके प्रदूषण के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। वकील आर के कपूर की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली से फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी नोटिस भेजी गई है। दिल्ली में पिछले सप्ताह भर से प्रदूषण की वजह से धुंध छाई है और ये कुछ इस कदर अधिक है कि राजधानी के स्कूल कई दिन बंद रहने के बाद आज ही खुले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस यूनाइटेड ने दिल्ली आने और यहाँ से जाने वाली अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने खबरों के मुताबिक भारत में यात्रा करने को लेकर नागरिकों को सलाह जारी की है। लेकिन इन गंभीर हालात के बीच भी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच राजनीतिक रस्साकशी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुलाकात के लिए खत लिखा तो खट्टर ने जवाब में पूछा कि दिल्ली सरकार ने अपने क्षेत्र में मौजूद 40,000 किसानों को पुआल जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। पूरे मामले पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा,
हवाओं की गंभीर स्थिति है हरियाणा के अंदर। क्या कर रही है हरियाणा सरकार? क्या वहाँ के लोगों की सांसों की चिंता वहाँ की सरकार को नहीं करनी चाहिए? पंजाब के अंदर इससे ज्यादा प्रदूषण है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? दिल्ली की सरकार जितना करने की स्थिति में है उससे ज्यादा हम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक भी जिम्मेदारी है और यहाँ के लोगों के साथ हमारा कंसर्न है।
कटाई के बाद खेतों में बच गई खूंटी और पुआल को जलाने को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की एक वजह बताया जा रहा है। राजधानी में बड़े पैमाने पर हो रहा निर्माण कार्य और वाहन भी इसकी वजह बताई गई हैं। इस मामले पर दिल्ली सरकार ने पहले वाहनों के लिए ऑड और इवन स्कीम लागू करने का सुझाव दिया था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि स्कीम में महिलाओं और मोटरसाइकिल सवारों को दी जाने वाली छूट से इसका फायदा कम हो जाएगा और दिल्ली सरकार इसमें तब्दीली करे। लेकिन बाद में इस मामले पर बुलाई गई बैठक में दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा ही नहीं, जिसे लेकर ट्राइब्यूनल ने हुकूमत से सवाल उठाए हैं। इधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हालात में पहले से सुधार हुआ है।
पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, खासकर पिछले 24 घंटे में जो एयर क्वालिटी का लेवल काफी इम्प्रूव हुआ है। जो PM2.5 और PM10 है, इनके लेवल्स जो है वो लगातार गिर रहे हैं। अगले 2 दिन के लिए हमारे मेट्रोलॉजी वालों का अनुमान है कि विंड जो है और चलेगी, स्पीड उसकी इम्प्रूव होगी, दो दिन में बारिश भी कभी भी हो सकती है 14-15 तारीख के अंदर।
उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर पिछले 2 महीनों में कम से कम मंत्री स्तर की 4 बैठकें कर चुका है और अभी भी इसकी गंभीरता से निगरानी की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर पंजाब की हुकूमत ने पहले ही यह कहते हुए पलड़ा झाड़ लिया था कि इसमें राज्य स्तर पर बैठक के साथ साथ केंद्र के साथ भी बातचीत होनी चाहिए।
ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे फैसल मोहम्मद अली। राजस्थान के अलवर जिले में शुक्रवार को गाय लेकर जा रहे उमर मोहम्मद की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। घटना अलवर जिले की है। इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
जिस पिकअप वाहन में गायें थी वो सड़क पर मिला, जबकि उमर मोहम्मद का शव रेल पटरी पर पड़ा मिला। अलवर पुलिस कहती है उमर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अलवर पुलिस प्रमुख राहुल प्रकाश कहते हैं कानून में गौ तस्कर जैसा कोई शब्द नहीं होता।
हमारी शब्दावली के अंतर्गत बातें नहीं आती है। हमारे लिए एक अपराध है जो कि 302 का अपराध है और 302 के अपराध के अंतर्गत हम इन्वेस्टिगेशन करें, उसी के अंतर्गत कार्रवाई करें। चूंकि बाकी नाम आ गए हैं तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करें। रात में भी दबिश दी गई थी।
जो उमर के मृत्यु का प्रकरण है उसमें हम लोगों ने एक व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ कर रहे हैं और अभी तक में उसने लगभग पूरे घटनाक्रम की तायद की है और अपने साथ टोटल 5 दूसरे लड़कों को बता रहा है इस घटना में।
पुलिस ने गौ तस्करी का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस कहती है उस वक्त उमर के साथ ताहिर और जब्बार भी थे, उनकी तलाश की जा रही है। इस घटना को लेकर मेव समुदाय ने रविवार को अलवर में विरोध प्रदर्शन किया था। अलवर के मौलवी हनीफ घटना के लिए कथित गोरक्षकों को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन अलवर में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक ज्ञानदेव आहूजा कहते हैं ये सब गौ तस्कर हैं।
गौ रक्षक नहीं है, गौ तस्कर हैं। चाहे वो पहलू खां था, चाहे तायर और ये जो मर गया है, ये हैं, ये गौ तस्कर हैं, गौ हत्या करते हैं और जो गौ रक्षक इनको रोकते हैं उनको पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लाठियां बरसाते हैं, हमला करते हैं।
उमर मोहम्मद के परिजनों में से एक रजाक कहता है उमर के बच्चे यतीम हो गए। रजाक के स्वर में शोक, वेदना और न्याय के लिए मिन्नतें थी।
हमारी मांग ये है न्याय होना चाहिए और हमारे से अन्याय हुआ, मतलब ये इतना बुरा हाल से मारा, मतलब ये जीव भी नहीं होता, मतलब गिरफ्तार होंगे वो, मतलब ये जिनने हमारा बच्चा संग ये करा है, हमने न्याय चाहिए।
प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस ने घटना के लिए बीजेपी सरकार की निंदा की है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है।
इस प्रकार का कानून व्यवस्था का हाल कभी भी इस प्रदेश में नहीं देखा। ये सरकार तो बिल्कुल जो है इस तरीके की सरकार आई है कि ये कुछ नहीं कि सारा प्रदेश को बिगाड़ के रख दिया।
कोई 7 माह पहले अलवर जिले में गाय लेकर जा रहे पहलू खां को भीड़ ने इतना पीटा कि वो चल बसा। तब भी यही मुद्दे केंद्र में थे, अब भी वैसे ही मुद्दे हैं, वैसा ही पक्ष प्रतिपक्ष। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
दिनभर कार्यक्रम आप BBC हिंदी सेवा से सुन रहे हैं, मैं हूं राजेश जोशी। और अब एक खबर उस सरकारी अधिकारी के बारे में जिनका 50वीं बार तबादला हुआ है। हरियाणा के IAS अधिकारी अशोक खेमका की 24 साल की नौकरी है और इस दौरान साल में औसतन 2 बार उनका तबादला किया गया है। अब उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग से हटाकर युवा और खेल मामलों के विभाग में भेज दिया गया है। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने अशोक खेमका से बात की और पूछा कि आप अपने तबादलों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं।
ये बड़ा मुश्किल प्रश्न आपने पूछ दिया, ये वैसे पूछा, इसका 2012 में मैंने जवाब दिया था। आप दूसरे पक्ष से पूछिए इनका ट्रांसफर क्यों हुआ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, देखिए मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ऑर्डर मंत्री ने भेजा, 8 आदमियों के ट्रांसफर ऑर्डर भेजे। मैंने मंत्री को वापस लिखकर भेज दिया अपनी कलम से कि इसमें कोई प्रशासकीय स्वार्थ निहित नहीं है। अगर कोई स्वार्थ है प्रशासकीय तो आप लिख कर दें।
जी
ठीक है
जी।
मंत्री ने फाइल उसकी रख ली। मैंने कहा ये निजी स्वार्थ है, प्रशासकीय स्वार्थ नहीं है। तो प्रशासकीय क्या चीज थी जिसकी वजह से ट्रांसफर हुआ, ये तो करने वाला बताएगा ना। ये कह सकता है कि भाई ये 2 साल रह लिया जो टेन्योर था, अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा। इसका एक कारण निश्चित रूप से है और निश्चित रूप से वो भ्रष्ट कारण है।
अशोक जी, ये सवाल आपसे बार बार पूछा गया होगा, मैं दोहरा रहा हूँ। हर बार जब आपका ट्रांसफर होता है पहली चीज आपके मन में क्या आती है, क्या लगता है आपको? ट्रांसफर ऑर्डर तो आपके लिए एक रूटीन सी बात हो गए होंगे।
नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो विक्टिम होता है उसका बार बार जब रेप होता है तो वो रेप रूटीन कभी नहीं होता है। 80 बार भी रेप होता है, 81 बार भी रेप होता है, तो हर वक्त जैसे कोई नया शिशु जन्म लेता है तो उसको जब सहेजा जाता है, एक नई जिंदगी और एक नई एनर्जी या नई ऊर्जा का जब प्रादुर्भाव होता है, फिर उसे छीन लिया जाता है, तो एक हल्का सा क्षणिक कुछ खोने का एहसास होता है, लेकिन फिर अपनी नई जिंदगी शुरू हो जाती है।
मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, ये आपका 51वां तबादला बताया जा रहा है?
51वां नहीं, ये पूरी 50वां है। अभी हमने यूपी ये कोई आए थे तो वो वेबसाइट पे देखा तो ये 50th, exactly 50th
50वां आपका ये तबादला है। अच्छा, तबादले के लिए मानसिक रूप से आप कितने तैयार रहते हैं?
दो तीन दिन तो बहुत खराब लगता है, बाकी ठीक हो जाता है।
क्या आपको लगता है कि मैं एक बार फिर हार गया हूँ?
शुरू में लगता है, लेकिन फिर लगता है कि मेरे को हराने वाला सिर्फ मैं हूँ, किसी और से मैं नहीं हारूंगा, कोई अगर हारूंगा तो अपने आप से हारूंगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेम का। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार अमित आर्य ने इस तबादले को रूटीन मामला बताया।
तबादले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जिस डिपार्टमेंट जो दिया गया उस डिपार्टमेंट में भी बहुत कुछ करने को है, ऐसा नहीं है।
मेरी उनसे बात हो रही थी अमित जी, उनका कहना था कि जिस डिपार्टमेंट में मुझे भेजा जा रहा है वो इसके मुकाबले एक अच्छा डिपार्टमेंट है, और निश्चित तौर पे ये तबादला सजा नहीं है, लेकिन जो मैं काम यहाँ पे कर रहा था और जो मेरी योजनाएं थी उनको प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट बिल्कुल साफ कहा कि इसके पीछे सरकार के कुछ भ्रष्ट लोग हैं।
कौन वो भ्रष्ट लोग हैं? और मुझे लगता है कि बीइंग ए वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट मैच्योर पर्सन, उनको उस चीज को बताना चाहिए। वो सिर्फ ट्वीट पे लिख के दो शब्द लिख के आप बताइए ना, क्या दिक्कत है? जब आप इतना लिख रहे हैं तो ये भी बताइए कौन लोग हैं। तबादले, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें तबादले नहीं होते? तबादले होते हैं ना जी।
सरकार के सलाहकार अमित आर्य। और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
सरोज सिंह।
नमस्कार।
नमस्कार।
आपके पास ढेर सारी चिट्ठियां दिख रही हैं डाक से आई हुई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारी चिट्ठी लिखने वाले श्रोता अक्सर शिकायत करते हैं कि आप ईमेल ज्यादा ले लेते हैं। तो चलिए आज डाक वाली चिट्ठियों से शुरुआत करिए।
मैंने भी सोचा उनकी इस शिकायत को दूर कर दिया जाए, इसलिए आज मैं इन चिट्ठियों के साथ हूँ। सबसे पहली चिट्ठी जो है वो है उपेंद्र ठाकुर की, पिपरा कोठी चंपारण बिहार से इन्होंने लिखा है। इनका एक खत हमने पिछले गुरुवार को शामिल किया था, लेकिन उनका कहना है कि हम सही से नहीं पढ़ पाए कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। वो कहते हैं कि इंडिया बोल कार्यक्रम में उनका मोबाइल नहीं लग पाता जो नंबर दिया जाता है, इसलिए वो आग्रह कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर उनका जो है उसे रजिस्टर कर लें, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है।
मैं समझ सकता हूं इनकी तकलीफ और परेशानी, और ये कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, और इनकी तरह के बहुत सारे हमारे सैकड़ों हजारों श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें फ़ोन करते हैं, और टेलीफोन लाइन की एक सीमा है, और टेलीफोन लाइन के व्यस्त होने के बाद और जब बहुत सारे लोग एक साथ फ़ोन कर रहे हों तो कई बार संभव है कि कॉल ना लगे, लेकिन अलग से टेलीफोन नंबर एडवांस में किसी भी श्रोता का रजिस्टर करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में जब ये कार्यक्रम में फ़ोन करेंगे तो इनका फ़ोन कॉल हम तक पहुंच सकेगा और हम इनको कार्यक्रम में शामिल कर सकेंगे।
इस बार के लिए माफ़ी उपेंद्र जी। अगला खत जो हम ले रहे हैं वो है शत्रुघ्न सिंह चौहान, नवाबगंज उन्नाव से इन्होंने लिखा है कि भूपेन हजारिका पर वर्षों से उन्होंने कई कार्यक्रम को सुना, लेकिन जो विस्तार और जो विविधता इस उन्होंने यतेंद्र मिश्र जी के कार्यक्रम में सुना वो बहुत दुर्लभ है, इसके लिए उन्होंने साधुवाद दिया है।
यतेंद्र मिश्र एक जाने माने कला समीक्षक हैं और संगीत उनका क्षेत्र है। वो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, और कांच के उस तरफ जो अजित सारथी बैठे हैं हमारे स्टूडियो मैनेजर, उनकी भी इसमें खासी भूमिका होती है, और ये लोग बड़े प्यार से ये कार्यक्रम बनाते हैं जिसको आप जैसे श्रोता पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और ये बात हम यतेंद्र जी तक भी पहुँचा देंगे।
अगला जो खत ले रही हूँ वो है अभय कुमार निराला का, बक्सर बिहार से इन्होंने लिखा है, एक शिकायत की है। सबसे पहले राजेश जोशी जी किसी दिन गलत तारीख पढ़ गए, 8 नवंबर की जगह 9 नवंबर बोल गए, तो इन्होंने कहा लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इसे शिकायत न लें, लेकिन उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो दुरुस्त पढ़ेंगे।
देखिए, राजेश से माफ़ी ले लीजिए, जोशी न प्रियदर्शी सही, बात एक ही है, गलतियां न हो ज़्यादा अच्छा है, हम कोशिश भी करते हैं अपनी तरफ से, और आप भी कह रहे हैं कि आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, एक मानवीय भूल है जो हो गई, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं।
लेकिन आप इतनी बारीकी से सुनते हैं, इसका
ये बड़ी बात
ये बड़ी बात है हमारे लिए। उसी के साथ उन्होंने लिखा है विज्ञान एवं विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया जाएगा जो अक्सर मंगलवार को पहले प्रसारित होता था, इसके बारे में उन्हें जानकारी चाहिए।
उस कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता मैं खुद भी रहा हूँ कई साल तक, लेकिन हमने यही देखा और पाया कि विज्ञान से जुड़ी हुई जो भी बड़ी खबर होती है अब वो कार्यक्रम का हिस्सा होती है।
अगला जो खत है वो है तुंगनाथ यादव का, देवघाट देवरिया उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिखा है। शिकायत है कि इनका खत हम शामिल नहीं करते हैं और आपकी शिकायत को हम देखते हुए इस बार शामिल भी कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि जिस दिन बीबीसी को नहीं सुनते उस दिन ऐसा लगता है कि जीवन की कोई जरूरी वस्तु खो सी गई है।
तुंगनाथ जी बहुत धन्यवाद पत्र लिखने के लिए, और देखिए हमने आपका पत्र शामिल किया। इसी तरह से लिखते रहिए हमें पत्र, और अच्छी बुरी जो भी बात आपको लगे हमारे कार्यक्रमों के बारे में हमें जरूर बताइए।
अगला जो खत है वो रेहान फजल जी के लिए है। उनका कार्यक्रम था विवेचना, उसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान साहब पर जो विवेचना प्रस्तुत की वो उन्हें बहुत पसंद आई है। और अगर हम किसी भी दिन चिट्ठियां पढ़ें और रेहान जी के नाम की कोई इस तरह की चिट्ठी ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा मुझे भी अब लगने लगा है।
ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और इनकी एक खास बात यह है कि कम से कम 3-4 रंग की स्याही का इस्तेमाल करते हैं हमें ये पोस्ट कार्ड पर लिखने में, तो दूर से इनका पोस्ट कार्ड देख के पता चल जाता है। और इसी तरह से सभी श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि हमें पत्र लिखते रहें। अगर आप हमें डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और क्षमा प्रार्थना मेरी ओर से यानी राजेश जोशी की ओर से कि मैं 8 नवंबर की जगह 9 नवंबर कह गया था, आप मुझे क्षमा करेंगे। खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को अपने नाम करने के बाद सानिया नेहवाल और एचएस प्रणॉय की निगाहें चाइना ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर पर हैं। 14 नवंबर यानी कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन सुपर सीरीज में अगर सानिया नेहवाल और एचएस प्रणॉय का अच्छा प्रदर्शन रहा तो वो दुबई सुपर सीरीज फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। नागपुर में हुए सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जहां सानिया नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराया था तो वहीं किदांबी श्रीकांत को हराकर एचएस प्रणॉय ने मेन सिंगल्स में जीत हासिल की थी। और अब दोनों की तैयारी रहेगी चाइना ओपन सुपर सीरीज पर अपनी पकड़ बनाने की, जो 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक खेला जाएगा। खबर क्रिकेट के मैदान से। मलेशिया में खेले जा रहे एशिया कप में श्रीलंकाई स्पिनर केविन कोतिगोड़ा के बॉलिंग एक्शन को देखकर सभी हैरान हैं। कई क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि केविन का गेंदबाजी एक्शन लगभग उसी तरह है जिस तरह दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पॉल एडम्स का था। पूर्व गेंदबाज पॉल एडम्स बाएं हाथ के चाइना मैन गेंदबाज थे। कहा जा रहा है कि केविन कोतिगोड़ा एडम्स पॉल का दाएं हाथ का संस्करण है। इस हफ्ते श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 61 रनों की महत्वपूर्ण जीत केविन कोतिगोड़ा की बदौलत ही हासिल की। 18 वर्षीय लेग स्पिनर केविन कोतिगोड़ा के बॉलिंग एक्शन को देखते हुए क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ी हैरान हैं। और अब खबर टेनिस के मैदान से। लियांडर पेस और पूरव राजा की जोड़ी ने जेम्स और जॉन पैट्रिक स्मिथ की जोड़ी को हराकर नॉक्सविल चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट टाइटल अपने नाम किया। लियांडर पेस और पूरव राजा की जोड़ी ने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराया। ये इस जोड़ी का पहला टाइटल है। ये मुकाबला रविवार शाम को खेला गया था। खेल की दुनिया से इतना ही, नमस्कार।
ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। ईरान इराक के बीच पहाड़ी सीमा पर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान जारी है। इस भूकंप के कारण अब तक तकरीबन 400 लोग मारे गए हैं और 4000 लोग घायल हुए हैं। आसियान सम्मेलन से इतर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका के रिश्ते परस्पर हितों से आगे हैं और ये एशिया और मानवता के लिए लाभप्रद हैं। म्यांमार सेना ने कथित तौर पर रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के प्रमुख को बदल दिया है। जनरल मॉन्ग मॉन्ग सो को पद से हटाने का कारण नहीं बताया गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए वह यमन के मुख्य बंदरगाह को फिर से शुरू नहीं होने देगा। एक हफ्ते पहले सऊदी में हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद सऊदी गठबंधन ने यमन की नाकेबंदी कर दी थी। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले लेबनान के नेता साद हरीरी ने कहा है कि वह जल्द ही लेबनान लौटेंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
इसका तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूं। कल सुबह हमेशा की तरह 6:30 बजे हम एक बार फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।